समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन का दर्शन है इन पंक्तियों में, जीने का संदेश है इस रचना में। और ये रचना है सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आज करेंगे चर्चा आज की न्यूज मैगजीन कार्यक्रम में। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। सभी सुनने वालों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार कीजिए स्वीकार हमारा, और साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार देवेंद्र। नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे विद मी शगुन चोपड़ा एंड देवेंद्र। Well, yes, we will be discussing about more such personalities and the lines that he shared. They paint a vivid picture, very beautiful. And we have more such personalities that we will be discussing about in detail at the end of the program. Well, also, we'll be giving you national and international news, Metro City updates and some historical information which is related to today. Today,
और साथ में जी और साथ में मौसम का हाल भी बताएंगे।
Exactly.
प्रमुख महानगरों का, क्योंकि मौसम बदल रहा है।
जी, well said. And today it's 27th of November and we are first beginning with headlines.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम प्रथम का भी अनावरण करेंगे। इस रॉकेट से उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित भी किया जा सकता है। इस अत्याधुनिक परिसर में लगभग 2,00,000 वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा, जहां बहु प्रक्षेपण यानों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाया जा सकेगा। स्काईरूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है।
The cabinet has approved the scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets with a financial outlay of 7,280 crore rupees. This first of its kind initiative aims to establish 6,000 metric tons per annum of integrated rare earth permanent magnet manufacturing in the country. Briefing media in New Delhi last evening, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav highlighted that rare earth permanent magnet are one of the strongest types of permanent magnets and are vital for electric vehicles, renewable energy, electronics, aerospace and defense applications.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए देशभर में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि UIDAI ने ये डेटा भारत के महापंजीयक कार्यालय तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी आधार नंबर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर यह आवश्यक है कि उसका आधार नंबर हटा दिया जाए, ताकि पहचान में धोखाधड़ी या उस व्यक्ति को मिलने वाले फायदे पाने के लिए ऐसे आधार नंबर के बिना अनुमति के उपयोग पर रोक लगाई जा सके। UIDAI ने आधार नंबर धारकों से कहा है कि वे मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट माई आधार पोर्टल पर अवश्य दें।
President Draupadi Murmu will address the inaugural session of the third edition of the Chanakya Defence Dialogue 2025 in New Delhi this morning. The two-day event will bring together national and international experts to deliberate on defence reforms, technological transformation, civil-military integration and India's emerging security priorities in the run-up to Viksit Bharat by 2047. So the Chanakya Defence Dialogue 2025 is being organised under the theme Reform to Transform, Sashakt, Surakshit aur Viksit Bharat.
भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आमसभा में कल भारत के नाम पर मुहर लगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को मिलने पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश की सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना ने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है।
Now let's tell you about IFFI 2025, where filmmakers are arriving every hour and adding to the glitz at the red carpet. Filmmakers and actors are here presenting their films, their labor of love to cinema lovers. One such filmmaker is Tejas Prabha Vijay Deoskar, who is presenting his film Ground Zero, starring Imran Hashmi. And we have a report. Cinema is what people are literally breathing at IFFI 2025. Filmmakers and actors are here presenting their films, their labor of love to cinema lovers. One such filmmaker is Tejas Prabha Vijay Deoskar, who is presenting his film Ground Zero, starring Imran Hashmi. But director Tejas's journey of filmmaking started when the seed of creativity and imagination was sown in him through his parents and especially his mother, who was an announcer at Oriental Radio. Tejas remembers his association with AIR as a young boy.
My mother was working with All India Radio as a full-time announcer, and she retired in 2013. So as a kid, I used to go to studios all the time. I used to operate with the consoles and mics and faders, and I used to go to the music rooms and talk studios and everything.
Today, some wonderful movies are lined up for screenings and most of the halls are already sold out. Some films to be screened today are Orenda, Cotton Queen, A Poet, Sleepless City, The Woman, among others. However, people are looking forward to the masterclasses today. Amir Khan, the Tom Hanks of India, has a session titled The Narrative Architect of the Social Transformation and Inclusivity. 50 years of the magnum opus Sholay are being celebrated, and filmmaker Ramesh Sippy and Kiran Sippy will be talking on why Sholay still resonates. While it's important to produce good cinema, it's equally important to preserve cinema. Nagarjun and C.V. Rao would be talking on preserving the classics, The Journey of Shiva. It is to be noted that IFFI 2025 is also screening classics like Pyasa, Gaman, Umrao Chan, Dr. Goodness Ki Amar Kahani, among others. Stay tuned to Akashvani for latest updates from IFFI, where cinema is beating in hearts of many. With Adarsh and Nikhil, this is Saira Mushtaba for Aaj Savere from IFFI, Goa.
आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश के प्रमुख महानगरों से क्या खबरें हैं।
वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई।
जी,
द स्टेट गवर्नमेंट्स फर्स्ट विलेज स्टार्टअप कम्युनिटी वॉज लॉन्च्ड इन कोयम्बटूर यस्टरडे। द स्टार्टअप कम्युनिटी इज अ स्टेट वाइड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव एंड द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू नर्चर 100 इनोवेटिव स्टार्टअप्स इन 100 विलेजेस इन द स्टेट। Under the scheme, Startup TN's 10 regional hubs will develop rural startup ecosystems in 10 villages, offering incubation support, market validation and legal as well as branding assistance there. So a centralized digital dashboard will track progress, document best practices and support scale-up across the state. Another update from Chennai. The researchers of IIT Madras have developed and deployed India's first indigenous vessel traffic management system for ports. The system has been developed completely by the National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts, based on the requirements outlined by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. So this system will provide a major boost to indigenization of technology and expertise in the Indian maritime sector and reduce dependency on imports. We are heading now to Bengaluru. Karnataka Energy Minister K.J. George has said that power link lines will be established within substation limits to ensure a reliable demand-based electricity supply in the state. He was speaking at a progress review meeting organized by Karnataka Power Transmission Corporation Limited in Koppal yesterday. He ordered the officials to guarantee complete line-to-line connectivity at all substations. The minister also directed them to immediately repair or replace transformers, especially supplying power to farmers. Now, let's focus on Hyderabad. The Telangana State Social Welfare Residential Educational Institution Society has decided to introduce a facial recognition system for recording students and staff attendance in its 268 institutions in the state. The society has asked principals to inform all students and staff to mark attendance twice a day, every morning and evening. So the facial recognition system will automatically log attendance to ensure accuracy and efficiency. And they were also instructed to inform all students, staff and parents regarding the change in the attendance system. And hereby we are also informing you. So these were the updates, Devendra, from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Now over to you for Delhi, Mumbai and Kolkata's updates. Let's find out what's happening there.
Ji, Delhi se pehli khabar. Rashtrapati Draupadi Murmu ne kaha hai ki Bharat ka samvidhan desh ka rashtriya mahakavya hai aur uske pravadhanon ka palan karna sabhi ka kartavya hai. Rashtrapati ne ye baat kal Nayi Delhi mein Sarvochcha Nyayalay dwara ayojit संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि बच्चों को भी संविधान के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए. संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में भी संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने संविधान की शपथ ली. नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने अंतिम दौर में है. आज इस मेले का समापन हो जाएगा. वार्षिक व्यापार मेले के अंतिम चरण में कल सभी मंडपों में भारी भीड़ देखने को मिली. मेले में प्रदर्शित वस्तुओं पर भारी छूट से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते नजर आए. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आज विशेष पवेलियनों को अलग अलग श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा. इस वर्ष मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत. और अब मुंबई का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को बसों में यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने पर उचित सहायता के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800221251 शुरू किया है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने छात्रों की यात्रा को आसान बनाने के लिए दिए जाने वाले विभिन्न लाभों की जानकारी दी है. धाराधीव जिले के अपने दौरे के दौरान मंत्री को बस सेवाओं में देरी के कारण स्कूली छात्राओं की समस्याओं का पता चला. उन्होंने आगे कहा कि स्कूली छात्रों की हानि के लिए संबंधित क्षेत्र के डिपो प्रबंधक और उनके पर्यवेक्षक जिम्मेदार होंगे. इथियोपिया ज्वालामुखी के धुएं और नवंबर, दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी के महीनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के नियमित रूप से बढ़ने के कारण मुंबई के मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया है. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार कल मुंबई का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में रहा. स्थानीय प्रशासन ने बाहर निकलते समय मास्क पहनने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को कल पुष्पांजलि अर्पित की. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य मंत्री आशीष शेलार ने भी दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे. और अब चलते हैं कोलकाता. राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भी बाघों के आकलन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन बाघ अभयारण्य में कैमरे लगाने का काम भी शुरू हो गया है. कैमरे लगाने की यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी. कुल 320 जोड़ी कैमरे लगाए जाएंगे. और श्रोताओं, महानगरों की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं. जैसा कि हमने कहा था शुरुआत में ही कि मौसम बदल रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर हम तापमान की बात करें तो आज 8 और 9 डिग्री के बीच तापमान रहने की संभावना है, जो सामान्य से नीचे रहेगा. शगुन, देश के कई उत्तरी शहरों में सामान्य से कम तापमान हो रहा है, जिसके कारण सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है समय से पहले. जी कह सकते हैं. और अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. सुबह हल्की धुंध और कहीं कहीं पर हल्का कोहरा रहने के आसार हैं. मुंबई में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 33 और मिनिमम 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा. कोलकाता में सुबह कोहरा छाने और दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है. तापमान 17 और 28 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है.
Well, Chennai is expected to have generally cloudy sky with the possibility of light rain. The minimum temperature will be around 26 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Bengaluru again, There is a possibility that there will be partly cloudy sky there. The minimum temperature is expected to be 18 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad, partly cloudy sky with haze. The minimum temperature will be around 16 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees Celsius there.
जी, तो तापमान की बात कर ली और जैसा कि मुंबई की खबर में हमने पढ़ा कि वहां धुआं का गुबार या प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और दिल्ली एनसीआर समेत तमाम जगहों पर सर्दियों के मौसम में हर जगह थोड़ा प्रदूषण का स्तर बढ़ता है क्योंकि हवा में एक नमी का स्तर बना रहता है और प्रदूषण बिखर नहीं पाता. जो प्रदूषण के कण हैं, धुएं हैं, धूल है, तो इससे बचने के लिए अगर प्रदूषित शहर से गुजर रहे हैं या रह रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें.
यस, डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, दिस इज अ नेसेसिटी.
जी, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने श्रोताओं से इतिहास के बारे में. आज है 27 नवंबर और आज के दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जो इतिहास का हिस्सा बनी है. सबसे पहले 1001 की घटना, जो हिंदू शासक जयपाल को आक्रमणकारी महमूद गजनी की हार से जुड़ी हुई है.
In 1795, the first ever Bengali drama was publicly staged in Kolkata, and this is considered a significant moment in the history of Bengali literature.
जी, और 1815 में पोलैंड साम्राज्य ने संविधान अपनाया था आज ही के दिन.
In 1826, chemist John Walker invented friction matches, and this was an accidental discovery. In 1885, now the first ever photograph of a meteor was taken by astronomer Ladislaus Wieneck on this date in Prague.
जी, और 1895 में अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी. 1912 में अल्बानिया ने आज ही के दिन यानी 27 नवंबर को अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था.
In 1924, the first Macy's Thanksgiving Day Parade was held in New York City.
जी, वर्ष 1949 में जबलपुर के निवासियों ने चंदा इकट्ठा करके नगरपालिका प्रांगण में प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की आदमकद प्रतिमा लगवाई थी, जिसका अनावरण सुप्रसिद्ध कवयित्री और उनकी बचपन की सहेली महादेवी वर्मा ने किया था.
In 1971 now, the Soviet spacecraft Mars 2 became the first man-made object to reach the surface of Mars, but it was a crash landing because the descent module, it failed. In 2000, Norway opened the Lardal Tunnel, a 24.6-kilometer route connecting Oslo and Bergen, making it the longest road tunnel in the world. This happened in the year 2000.
Gee. और अब आगे बढ़ते हैं और स्मरण करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है और जिन्होंने अपने कार्यों, अपने विचारों से समाज को प्रेरित किया. और शगुन, आज भी कई पीढ़ियां ऐसे लोगों से प्रेरित होती हैं.
They continue to motivate.
जी, आज का दिन साहित्य प्रेमियों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है हिंदी कविता के अमर रचनाकार मधुशाला के जनक हरिवंश राय बच्चन की जयंती. 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में एक छोटे से गांव में जन्मे बच्चन जी हिंदी साहित्य की उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिनकी कविता ने आधुनिक भारत को नई आवाज दी. उनकी काव्य भाषा सरल थी, भाव गहरे थे और शब्दों में वो जादू था जो सीधे दिलों तक उतर जाए. उनकी सुप्रसिद्ध रचना मधुशाला जब प्रकाशित हुई तो साहित्य और संस्कृति जगत में एक लहर बन गई. इसकी हर पंक्ति में जिंदगी, संघर्ष और आशा की ऐसी मिठास थी कि इसने हरिवंश राय बच्चन को रातों रात साहित्य रसिकों का प्रिय कवि बना दिया. बच्चन जी शिक्षाविद और संसद सदस्य भी रहे. उन्होंने साहित्य रचना के साथ साथ रूसी और अंग्रेजी साहित्य के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया. राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने समृद्ध किया और इसके लिए उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया. और कहने को मधुशाला को अगर हम उनकी रचना की बात करें तो एक जटिल रचना समझ में आती है, लेकिन जैसे जिस पंक्ति को हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पढ़ा था, जो बीत गई सो बात गई, कुछ उसी तरह के संदेश, कुछ उसी तरह का दर्शन, फिलॉसफी उनकी रचना मधुशाला में भी नजर आती है. और बड़े ही ठेठ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो और बहुत ही लोकल डायलेक्ट उनके कविता की खूबी है.
And this is one of the best known works.
जी,
right. जी. And we associate Madhushala with Harivansh Rai Bachchan ji, the poet and the also the member of early 20th century Hindi literary movement, Nayi Kavita and the romantic upsurge. Well, we are also remembering today.
जी, हिंदी के शीर्ष कवियों में अगली पंक्ति के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी आज पुण्यतिथि है. साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए शिवमंगल सिंह को 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता और माधव महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य और फिर कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। अध्यापन के अतिरिक्त विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़कर उन्होंने हिंदी साहित्य में श्रीवृद्धि की। उनकी मुख्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो काव्य संग्रह में शामिल हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मूल, मिट्टी की बारात और गद्य रचनाओं में महादेवी की काव्य साधना और गीति काव्य हैं उद्यम और विकास। मराठी उपन्यासकार, आलोचक और पत्रकार गजानन त्र्यंबक माडखोलकर का भी आज स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। माडखोलकर अपनी काव्यमयी भाषा शैली के लिए सुप्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना साहित्य जीवन रवि किरण मंडल नामक कवि समाज के सदस्य के रूप में कविता से आरंभ किया। माडखोलकर के कुछ आलोचकों ने उनकी कथात्मक रचनाओं में स्त्री पुरुष संबंधों की स्पष्ट व्याख्या को श्लीलता की मर्यादा से परे बताया। संस्कृत काव्य शास्त्र के ज्ञाता और अभिजात रसवादी होने पर भी वे आधुनिकता को सहानुभूति से देखते थे। उनकी मुख्य रचनाएं हैं मुक्तात्मा, शाप, दुहेरी जीवन, प्रभ दूरा, चंदन बाड़ी और ऐसी तमाम रचनाएं जो उस दौर में भी और आज के दौर में भी लोगों में लोकप्रिय हैं।
Well, they are relevant even today.
जी, आज जयंती है लक्ष्मीबाई केलकर की भी। वे भारत की प्रख्यात समाज सुधारक थीं। उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति नामक एक संगठन की स्थापना की थी। उनका मूल नाम था कमल, किंतु लोग उन्हें सम्मान से मौसी जी कहा करते थे।
Well, today we are also remembering Anders Celsius, the astronomer, physicist and mathematician. He was professor of astronomy at Uppsala University from 1730 laid back to 1744, and he visited notable observatories in Germany, Italy and France. He founded in 1741 the Uppsala Astronomical Observatory. And in 1742, this is interesting, he proposed an inverted form of the centigrade temperature scale, which was later renamed Celsius in his honor.
जी, और वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे इंदौर घराना से संबंधित थे। उन्हें देश में सारंगी को फिर से लोकप्रिय कराने का श्रेय जाता है। सारंगी के उस्ताद और हृदय को छू लेने वाले पिया बसंती रे तथा अलबेला सजन आयो रे सरीखे गीतों को अपनी आवाज देने वाले उस्ताद सुल्तान खान को संगीत संसार में भरपूर सम्मान मिला।
Beautiful voice, Ustad Sultan Khan. Well, sarangi player and classical vocalist. And sarangi, it is a bowed, short-necked, three-stringed instrument. Well, is played traditionally here. And it is said to resemble, this is interesting, listeners, it is said to resemble the sound of the human voice through its ability to imitate vocal ornaments such as gamaks or gamakam, as we say. And, well, Ustad Sultan Khan, one of the founding members of the Indian fusion group Tabla Beat signs with Zakir Hussain and Bill Laswell.
जी, और बिल्कुल आपने सही कहा। उन्होंने सुर कोकिला लता मंगेशकर, तबला वादक अल्लाह रखा खां व जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को भी अपनी कला से प्रभावित किया। और उनकी आवाज में भी जो जादू आपने देखा या सुना, उसे एक बार फिर सुनते हैं।
जानी क्या जादू किया, प्यारे की धूम छेड़े जिया,
काहे सताए आजा, पिया बसंती।
सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी को भी हम आज याद कर रहे हैं, जिनके संगीत से सजे गीतों ने लंबे समय तक संगीत रसिकों को रिझाया। उनके संगीत में कहीं डिस्को की चमक है तो कुछ गाने सादगी और गंभीरता से सजे हैं। आलोकेश लाहिड़ी को सिने संसार ने प्यार से बप्पी दा कहा। बप्पी लाहिड़ी ने 70 से 90 के दशक के दौरान भारतीय सिनेमा को अनेकों बेहतरीन गीत दिए। उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली 1975 की फिल्म जख्मी से, जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाया। फिर दौर आया बप्पी लाहिड़ी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी का, जिसने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए।
Well, yes, we are. Let's transport back to the 80s with timeless enchanting melodies of Bappi Lahiri. Well, he popularized the use of synthesized disco music, as we can rightly hear, in our industry, the music industry, and also sang some of his own compositions, right? And the turning point of his career was Thairu Sen's Hindi film Zakhmi in 1975, for which he composed music and it doubled as a playback singer as well then, Devendra.
Ji, bilkul. और एक गाना उनका और है उनकी संगीत से ज्यादा, जिसे हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को, जो आज के समय में भी बहुत लोकप्रिय हुआ है।
Yes, very popular.
दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानूं।
Well, his singing and music became even more popular and then got branded as Disco Master. Then, in the early 80s, he added an element of the then popular disco music, which I was also telling you, and even Devendra mentioned it, we were telling you about it. There is one more thing that I want to share with our listeners. His song Jimmy Jimmy, it was a success in the early 1980s, and it is also said to have achieved fame in other countries as well, globally.
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में शुमार मोहम्मद अजीज को भी याद करते हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने बंगाली, उड़िया और हिंदी फिल्मों में कई गाने गाए। कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में बतौर गायक अपना करियर शुरू करने वाले मोहम्मद अजीज को साल 1984 में किस्मत उन्हें मुंबई ले आई। मोहम्मद अजीज ने पहली बार पार्श्व गायन किया अमिताभ बच्चन के लिए, और फिल्म थी मर्द, जिसका टाइटल सॉन्ग आपको याद ही होगा।
ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।
Well, yes, we are stepping back in time and reliving the golden era of Bollywood music right here on our program today, in our program, with the iconic voice of Mohammad Aziz. Well, he has sung about 20,000 songs, and they include bhajans in Hindi, Odia and Bengali, also Sufi devotional songs and other genres as well. And this is interesting, he could sing at the seventh note, the Satwa Sur, and that was his वोकल रेंज।
जी, और ये कह सकते हैं उनकी यूएसपी थी, उनकी गायन की।
राइट, राइट।
अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम पर फिल्माया गया खुदगर्ज फिल्म का लोकप्रिय गीत आजकल आप लोगों को याद ही होगा श्रोताओं, क्योंकि जैसा कि मैंने बप्पी लाहिड़ी जी के लिए कहा कि उनके कुछ गाने आज भी सुने जा रहे हैं, और इसी तरह से मोहम्मद अजीज के भी कुछ गीत ऐसे हैं जो आज भी बहुत चल रहे हैं, बहुत सुने जा रहे हैं।
वेरी फ्रेश।
तो एक बार सुनते हैं उस गाने को, और आप जोड़िए उनके उस गीत के उस दौर से। तो ये गीत आपने सुना, और मुझे लगता है कि बहुत सारे श्रोताओं ने रिलेट किया होगा इस गाने को। और अब धीरे धीरे घड़ी की सुइयां हमसे इशारा कर रही हैं कि हम अपने श्रोताओं से विदा ले लें आज की न्यूज मैगजीन आज सवेरे को यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और ये कार्यक्रम अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं newsonair.gov.in पर।
वेल स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात ऑफ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।